बीबीसी इंडिया बोल शनिवार 20 मई आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत में सफलता का ताला अंग्रेजी के बिना क्यों नहीं खुलता? हिंदी पर क्यों भारी है अंग्रेजी जीवन के हर क्षेत्र में? इंग्लिश मीडियम के बोलबाले के इस दौर में हिंदी माध्यम वालों का क्या है भविष्य? क्या भारत में अंग्रेजी जाने बगैर अच्छी नौकरी मिल सकती है? इंडिया बोल में आज इसी मुद्दे पर है चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी को देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के आज नतीजे आ गए हैं। नतीजों के मुताबिक हसन रूहानी ने अपने प्रतिद्वंद्वी इब्राहिम रईसी को आसानी से हरा दिया है। हसन रूहानी को 57% से अधिक वोट मिले हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। मिस्टर रूहानी ने बहुमत हासिल कर लिया है। वे ईरान के 12वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। सुप्रीम लीडर ने इस भारी मतदान के लिए ईरान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। ये थे ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक एंकर के शब्द। राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी की पराजय को ईरान में कट्टरपंथियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर जताए जा रहे संदेहों के बीच राजनीतिक दलों को चुनौती दी है कि वे ईवीएम को हैक करके दिखाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा,
12 मई को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें आयोग ने अपनी समस्त राजनीतिक पार्टियों को ये आश्वस्त किया था कि एक ओपन चैलेंज का आयोजन किया जाएगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि हाल ही के 5 राज्यों में इस्तेमाल की गई मशीनों के संबंध में यह डेमोन्स्ट्रेट करें कि वे टेम्पर्ड थीं। और दूसरा चैलेंज ये भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे मशीनें जो चुनाव आयोग के तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा में रहती हैं उसमें रहते हुए भी क्या उनको टेम्पर किया जा सकता है। चुनाव आयोग 3 जून 2017 से आगे 3 जून से प्रारंभ करके और आगे तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं।
ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच नहीं दी जाएगी। अजीज ने दावा किया कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने पर कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने भारतीय मीडिया के हवाले से उस खबर को पूरी तरह निराधार बताया जिसमें दावा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जाधव को काउंसलर मदद देने के लिए कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाद हवाई अड्डे पर सऊदी अरब के शाह सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की अगवानी की। इसके बाद उनके स्वागत में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। रियाद में कल एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संभावना है कि चरमपंथी समूहों के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा इस सम्मेलन में छाया रहेगा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के कारोबारी समझौते भी हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल बैंक की एक शाखा पर चरमपंथियों के हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। ये हमला पक्तिया प्रांत की राजधानी गारदेज में हुआ है। इस हमले की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। हालांकि तालिबान चरमपंथियों ने इससे पहले भी उन बैंकों को निशाना बनाया है जहां पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अपना वेतन लेने जाते हैं। वहीं गजनी प्रांत से खबरें मिल रही हैं कि राजधानी गजनी सिटी में भीषण लड़ाई हो रही है जहां तालिबान ने अफगान सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला करने का दावा किया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं श्याम रुद्र पाठक, जो लंबे समय से भारत में हिंदी को उसका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही आप सब लोग जो इस कार्यक्रम को रेडियो bbchindi.com और फेसबुक पर सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या फिर हमें सीधे फ़ोन कर अपनी बात कह रहे हैं। जर्मनी ने बिना अंग्रेज़ी सीखे दुनिया को बेहतरीन कार बना करके दिया, फिर भारत में ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि बिना अंग्रेज़ी के उन्हें इंजीनियर नहीं माना जाएगा या फिर डॉक्टर नहीं माना जाएगा या फिर कई बार तो पढ़ा लिखा ही नहीं। भारत के बैंकों में अगर आप फोटो को तस्वीर कह दें तो आपको लखनऊ का निवासी बता दिया जाता है। शुद्ध भारतीय खाना परोसने वाली रेस्तराओं में भी खाना मांगने के लिए अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है। खिलाड़ी मैदान में चाहे जितने करिश्मे दिखा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अच्छी अंग्रेज़ी ना बोलें तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी पहले अंग्रेज़ी में और फिर हिंदी में बयान देते हैं। ये स्थिति भारत में हिंदी की क्यों है? लोगों को तरक्की पाने के लिए क्यों अंग्रेज़ी की बैसाखी लेनी पड़ती है? इसी पर आज इंडिया बोल में चर्चा है। मेरे सामने श्याम रुद्र पाठक बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम लोगों की बातचीत, लोगों के विचार जानने शुरू करें, उनके सवाल पूछें, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपने हिंदी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कई मंचों पर जाकर के संघर्ष किया है, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, क्या हुआ था?
मैं जब IIT दिल्ली में गया 1980 में
जी,
उन दिनों 11वें स्तर पे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अंग्रेजी माध्यम के ही लगभग 100% विद्यार्थी थे। वैसे प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 92.5% बच्चे थे अंग्रेजी माध्यम के
जी।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई कि इसका कारण ये है कि प्रवेश परीक्षा का माध्यम ही सिर्फ अंग्रेजी है। अंग्रेजी माध्यम परीक्षा होती है और उन दिनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा अंग्रेजी भाषा का अलग से एक अनिवार्य पत्र हुआ करता था। तो मुझे लगा बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा अन्याय है। और फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि केवल IIT में नहीं, हर जगह ये बात है कि अंग्रेजी माध्यम के लोगों को ही लिया जा रहा है, विकास का अवसर दिया जा रहा है और बाकी लोगों को छांट दिया जा रहा है विकास पद्धति से, विकास की प्रक्रिया से। तो मेरे जीवन का ये एकमात्र उद्देश्य था, सिंगल पॉइंट मिशन था। इसीलिए उस मुद्दे के लिए मैं कई बार आमरण अनशन पर बैठा और मेरा सबसे बड़ा अनशन हुआ था 19.5 दिनों का, उससे छोटा हुआ था 5 दिनों का शास्त्री वर्मा संसार विकास मंत्रालय के सामने। तो हालांकि ये काम मेरे जीवन का सबसे बड़ी तपस्या है कि जिससे कि अभी भी हर साल कुछ हज़ार विद्यार्थी आते हैं IIT में जो कि अन्यथा नहीं आ पाते, लेकिन मुझे जो ख्याति मिली थी वो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा था। 5 साल के बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो मैंने अचानक हिंदी में लिखा और मुझे भी इसकी पहले से कोई योजना नहीं थी और 5 साल तक मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। मैंने सभी पढ़ाई अंग्रेजी में मैंने की और सभी परीक्षाएँ अंग्रेजी में दी थी। तो वो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा था एक हताशा की वजह से, क्योंकि IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो, अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी माध्यम की, वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उस हताशा में मैंने फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिंदी में लिखा और वो अखबारों में गया और उसमें कहा गया कि ये गेट के ऑल इंडिया टॉपर हैं और फिर भी इनका MTech का दाखिला कैंसिल होने वाला है, प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका जो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MS फिजिक्स का कि जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिंदी में लिखे इस वजह से।
तो उसके,
बाद फिर वो संसद में वो उठा और तब स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर मैंने MTech में लिखा तो MTech में सर IIT ने एक नई शर्त डाली कि हम उसका हिंदी अनुवाद, उस हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कराएंगे। तो हमने उसका ही विरोध किया कि भाई अछूत भाषा तो है नहीं, अगर जो एग्जामिनर हैं उनको कोई समस्या हो तो आप अनुवाद करवाइए। तो उसमें कुछ विवाद हुआ, फिर बाद में उनको मानना पड़ा, उसको आरोन संघ धमकी दिया तो मानना पड़ा, वो भी संसद में बात गई। और डिग्री वहाँ पहले सिर्फ इंग्लिश में मिला करती थी तो मैंने कहा कि नहीं, मैं डिग्री अंग्रेजी में नहीं लूँगा। तो फिर डिग्री उन्होंने दीक्षांत समारोह उन्होंने डेट बढ़ाया और
फिर हिंदी में
उस साल से।
बहुत बड़ा योगदान है आपका, बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र से जो हमारे लोग आते हैं उनको इसका फ़ायदा हुआ। और लेकिन जो आपने तरीका बनाया, रास्ता बनाया लोगों के लिए, लेकिन उस रास्ते पर कितने लोग चले और उस फिर आगे चल के क्या उनके लिए वो राह वैसी ही रही या कितनी दिक्कत हुई, इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। क्योंकि भारत में अक्सर ये देखा जाता है, आप हम सब लोग इस चीज़ से रूबरू होते हैं, और कि जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी अंग्रेज़ी माध्यम की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उनको भी अंग्रेज़ी माध्यम से कई बार परीक्षाएं देनी पड़ती है, इंटरव्यू के सवाल अंग्रेज़ी में फेस करने पड़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं मोटाराम साहू बोल रहा हूँ, बटड़ू गाँव जिला बाड़मेर से।
बाड़मेर से मोटाराम जी बोल रहे हैं। जी कहिए, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है हिंदी की ये स्थिति क्यों है, क्या अंग्रेजी बहुत जरूरी है भारत में?
देखिए भारत 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है
जी,
और 1947 में हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए मगर मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेजी से हम आजाद नहीं हो पाए हैं।
जी तो क्या इसकी वजह क्या है, क्या मानते हैं ऐसा क्यों हुआ? मतलब ठीक है ये कहना तो बड़ा एक बहुत सी, सब लोग ये बात कहते हैं कि 200 साल गुलाम रहा, ये सब लोग जानते भी हैं, लेकिन क्या हम उसी बात को बार बार कह करके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं? अब हमें आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए हैं, आपको नहीं लगता ऐसा?
हाँ मानसिक रूप से अभी भी हम अंग्रेजी के गुलामी है ना, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, मातृभाषा हमारी वाली हिंदी हो।
वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों भाग रहे हैं, क्या क्या वजह क्या है? जैसे श्याम जी ने कोशिश की, इन्होंने हिंदी के लिए त्याग किया एक तरह से मैं कह सकता हूँ, और इन्होंने कहा कि नहीं मैं हिंदी में ही परीक्षा दूंगा, हिंदी में ही अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल करूंगा। आजकल के लोग, आजकल की जो पीढ़ी है वो इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाती है, वो इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछती है लोगों से, आपको क्या लगता है?
उनकी भी मानसिकता ऐसी बन गई है कि वो इंग्लिश को पढ़ना और उनमें बोलना वो आधुनिकता समझते हैं, जो हिंदी बोलते हैं उसको वो एक तरफ से उनका क्या है वो स्वीकार ही नहीं करते कि ये पढ़े लिखे सब ये लोग है ही नहीं।
जी बहुत शुक्रिया मोटेराम जी अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
हेलो।
जी अपना नाम बताइए।
दादा साहब पाटिल बात कर रहा महाराष्ट्र से।
जी पाटिल साहब बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर।
मुझे लगता है सर हमारे देश में जो क्षेत्रीय भाषावाद है, अब हम साउथ में जो अगर जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी को कोई पूछता भी नहीं है, वहाँ से बात भी नहीं होती है हिंदी में, वो तो अंग्रेजी बोलते हैं।
जी
वो मानसिक रूप से अभी भी वो तो राष्ट्रभाषा हम मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में आप ज्यादातर देखिए उनका जो सब वर्क रहता है वो अंग्रेजी में रहता है। और दूसरी बात जो प्रशासन में जो प्रशासन का जो रुख है हमारे महाराष्ट्र का, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप पहली कक्षा ही कक्षा से ही एक सेमी इंग्लिश का पैटर्न चालू किया गया है, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी का मतलब देश में इतना फैलाव हो रहा है। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि जो एजुकेशन है हमारे देश का, उस एजुकेशन में मैं अभी LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में LLB का हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर दूसरी माध्यम में कोई कॉलेज ही नहीं है उपलब्ध, वहाँ पर कोई शिक्षा ही नहीं मिल रही है।
आपने तो आपने इसके लिए कोई कोशिश की, आपने प्रशासन से या सरकार से कभी बात करने की कोशिश की?
कोशिश नहीं की सर अभी तक।
अभी तक आपने कोई कोशिश नहीं की?
हाँ,
इस तरह की जो कोशिशें जो आपने 1981 में 85 में किया, वो उस तरह की कोशिशें क्या अब भी हो रही हैं?
देखिए एक मैं जी एक विद्यार्थी के लिए जिसका करियर उसके सामने होता है, न तब थे बहुत लोग कोशिश करने वाले, तब भी मैं अकेला था
जी,
और ये संभव भी नहीं कि लोग करें। मैं भी जब किया, जब अपनी सुरक्षा ले लिया, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम पढ़ने के बावजूद मैंने IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी की, यानी अंग्रेजी की पुस्तक भी मैंने पढ़ी, एक बात। दूसरी बात कि मैंने आपको कहा कि 5 साल तक मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं अंग्रेजी में किया, और उसके बाद समाज में ये जो बेईमानी है उसके खिलाफ लड़ने की भावना से मैं लड़ा, वो एक अपवाद था, वहाँ भी मैं अकेले ही था लगभग। तो अभी भी जो आप सोच रहे हैं कि लोग संघर्ष करें, विद्यार्थी के पास अपना सिलेबस पढ़ने में व्यस्तता होती है
जी,
तो उसके पास ये समय कहाँ है कि वो सत्याग्रह करे, आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे, इसलिए मुश्किल है। तो इसमें बेईमानी सरकार की है। और ये जो आपके प्रथम वक्ता ने कहा कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, ये असल में गुलामी एक परिणाम है, कारण नहीं है
जी।
अंग्रेजी का जो अस्तित्व है तो वो उसके वजह से गुलाम मैंने होता क्या है कि विकास के अवसरों में अंग्रेजी की अनिवार्यता है, तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा अगर हम बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसे कि CAT है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो IIM की प्रवेश परीक्षा है
जी।
वो शुद्ध अंग्रेजी माध्यम है और अंग्रेजी भाषा का उसमें प्रश्न बहुत अहम भूमिका निभाता है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
जी।
ऐसे ही CLAT है 12वें स्तर पे CLAT है, अब देखिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी 1988 में, मैंने कहा जब हमने संघर्ष किया उसके बाद, और 1990 से हिंदी में प्रश्न पत्र आना शुरू हो गया, और 1990 में कई भारतीय भाषाओं में लिखने की छूट हुई। बाद में जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने लगे, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो लिखने का छूट का महत्व खत्म हो गया।
एक एक यही दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई के जो माध्यम हैं उनमें और भी कई दूसरी चीज़ें हैं, मतलब किताबें उपलब्ध नहीं हैं बहुत से भाषाओं में। आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के बाद अंग्रेजी माध्यम की किताबें पढ़ करके हिंदी में परीक्षा देनी पड़ती है कई बार। इसके अलावा एक और जो सवाल, एक बात जो कही पाटिल साहब ने कि आधुनिकता जो है, आधुनिक समझने की एक बीमारी है, कि मतलब लोग जो है उसको, अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा आधुनिक समझते हैं कि वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। इस तरह की भी सोच हमारे समाज में या हमारे देश के लोगों के बीच में दिखाई देती है। ये सिर्फ हिंदी के साथ ही नहीं है, दूसरे भाषा के भी जो लोग हैं, जो तमिल तेलुगु बोलते हैं, उनमें भी अगर अंग्रेजी उनको नहीं आती है तो उन्हें भी इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। हम इस सवाल पर वापस लौटेंगे, उससे पहले कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए।
अब्दुलजीत भट्ट जी, जम्मू कश्मीर के सुनकोट क्षेत्र से बोल रहा हूँ।
जी भट्ट साहब, जम्मू से आप बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर।
सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम, एक बात है कि सभी भाषा जो है, हमारी भाषाएं हैं, वो सीखना एक सम्मान की बात होती है, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है उसको भूल जाना अपमान की बात है। कि हमें अपनी जो असली भाषा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ हमें बाकी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें सभी दुनिया के साथ मिलजुल के रहना है। और अंग्रेजी तो एक ऐसी भाषा है कि इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं, लेकिन अगर हम अपनी मातृभाषा भूल जाएं तो उसके बगैर भी हम, हमारा जो विरसा है, हमारी जो हकीकत है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है या उर्दू है या जो भी हमारे हिंदुस्तान में है, हमें वो भाषाएं सबसे पहले घर से सीखनी चाहिए। अब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे घरों में बच्चे पहले से ही अपनी भाषा छोड़ के, माएं बच्चों को कभी कहती हैं कि वो डॉग है, वो कैट है, वो, मैं तो कहता हूँ
बच्चों को बचपन से। जी भट साहब जी, आपने अपनी बात कही, बच्चों को अंग्रेजी शुरू से ही, बचपन से ही सिखाया जाने लगा है। और एक और श्रोता है, उसके बाद फिर हम इस सवाल पर इनके आएंगे वापस। जी, अपना नाम बताइए।
मोहम्मद शफी जागल, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। सर,
हमारे दूसरे श्रोता भी कश्मीर से। जी जागल सर, बताइए क्या कहना है आपका।
सर, सबसे पहली चीज ये है कि हमारा, हमें वो गुलामी की जो बात है वो अभी तक हमारे जहनों में नहीं जा सकती। सबसे पहली बात ये है सर कि हमारे जो जितने भी लीडर हजरात है, या हमारे नुमाइंदे बनते हैं, या हमारे वजीर आजम बनते, ये इस तरफ तवज्जो नहीं देते तो कैसे होगा। अमीर का बच्चा जो है वो इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ता है, गरीब का बच्चा जो है बेचारा हिंदी पढ़ता है। अब इसको लागू कैसे करेंगे? पार्लियामेंट में जब हमारे खजाना मंत्री है वो इंग्लिश में तकरीर जो है वो पेश करते हैं, हेलो
जी जी,
हाँ, इंग्लिश में वो तकरीर करते हैं, तो मुझे ये बताइए गरीब बेचारा क्या करेगा, वो कैसे सीखा। और जितने भी बड़े बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े हाई क्वालिटी के दफ्तर, सब इंग्लिश बोलते हैं। तो गरीब के लिए हिंदी, अमीर के लिए इंग्लिश, बादशाह के लिए इंग्लिश, गरीब के लिए हिंदी, तो कैसे ये होगा जब तक ऊपरी सतह पर ये चीज लागू नहीं होगी।
आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के हुक्मरान हैं, जो राजनेता हैं, वो जब तक अंग्रेजी और हिंदी के इस फर्क को नहीं मिटाएंगे। आप ये, हम सब लोग भी देखते हैं कि हमारे नेता लोग या हमारे जो राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता हैं, वो पहले अंग्रेजी में बयान देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं यही बात हिंदी में दोहरा दे रहा हूँ, या सवाल भी आजकल, सवालों के जवाब भी वो अंग्रेजी में देते हैं। मैं, ये जो हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच में जो पैसे की बात आ गई कि ये अमीरों की भाषा है, ये पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों की भाषा है, और ये जो है ये गरीब लोगों की भाषा है जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, ये कहाँ से आ गया?
देखिए, भारत में एक अंधविश्वास फैला दिया गया है कि अंग्रेजी विकास की भाषा है, जबकि असलियत यह है कि विश्व के किसी भी देश ने किसी विदेशी भाषा के माध्यम से तरक्की हासिल नहीं की। अंग्रेजी जिन लोगों की अपनी भाषा है उन्होंने अंग्रेजी से तरक्की की है, लेकिन विश्व में जिस जिस देश ने विदेशी भाषाओं को अपनाया, और केवल अंग्रेजी ही नहीं, जो गुलाम देश थे, कहीं फ्रेंच है,
हाँ,
कहीं जर्मन है, तो वो, कहीं स्पेनिश है, तो वो सब पीछे रह गए। और जो अपनी भाषा में काम किए, यूरोप के छोटे छोटे देश, इनकी आबादी कुछ लाख में है, 1 करोड़ से कम आबादी वाले, स्विट्जरलैंड की आबादी 1 करोड़ से कम है और उनका प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है,
सबसे शानदार घड़ी बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते हैं,
फिनलैंड, बेल्जियम, ये सब छोटे छोटे देश हैं, एशिया में भी साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, ये सब अपनी भाषा में काम करते हैं। तो विश्व में सब देश अपनी भाषा में काम करके ही तरक्की कर पाए हैं। तो भारत में भ्रम अंधविश्वास फैला दिया गया है कि अंग्रेजी की वजह से ही हम तरक्की कर सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, ये झूठी बात है
जी।
अब ये जो जनता अंग्रेजी से आकर्षित हो रही है, मैं उसको मानसिक गुलामी नहीं मान रहा हूँ, मैं उसकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो थोपी हुई है। अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिटने का डर है। अभी
नौकरी नहीं मिलेगी,
पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाएंगे, मेडिकल नहीं पढ़ पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि विश्व के किसी देश में दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नहीं है।
हमारे
इजराइल छोटा सा देश है, उसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, वो हिब्रू में कर रहा है हर काम, जबकि और उसके यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो किसी भी आईटी से अच्छा है, हमारे आईटी भारत किसी भी आईटी से अच्छा हो टेक्नियन। तो ये भ्रम फैला दिया गया है, और ये जनता से हम तभी उम्मीद कर सकते हैं कि ये तथाकथित अंग्रेजी की मानसिकता गुलामी को त्याग करें। ये उम्मीद मैं तभी कर पाऊंगा जब सरकार ये जो देशद्रोह की नीति क्यों है, क्योंकि एक तो आप आम जनता को विकास के अवसर से वंचित कर रहे हैं, दूसरे में कि विकास प्रक्रिया में देश की प्रतिभा का 5% का ही योगदान हो पा रहा है, 95% प्रतिभा बेकार जा रही है
जी।
तो जब तक ये अवस्था बदलेगी नहीं, मैंने आपको कहा क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा, तो जब आईआईटी के लिए जो इंजीनियरिंग में अंग्रेजी का बहुत महत्व है, जब आईआईटी की प्रवेश परीक्षा 1988 में उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो गई अंग्रेजी भाषा की, और 1990 से माध्यम की अनिवार्यता समाप्त हो गई, तो अब क्लैट में अभी क्यों बना हुआ है? ये बदमाशी है एक प्रकार से, आम जनता को छांटने का षड्यंत्र है
जी। आपने जो कहा,
और मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं, और जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग है, उसके भी अधिकांश परीक्षाओं में अंग्रेजी का बहुत अहम भूमिका है। जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भी परीक्षा है सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, तो उसमें अंग्रेजी है 62.5%, और 37.5% में ही सारे ज्ञान विज्ञान के विषय, बहुत की रसायन, गणित, जीव विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इस सारे 37% में है
जी।
तो बताइए भारत कितना दुर्भाग्यपूर्ण देश है जहां प्रतिभा की पूछ ही नहीं है।
अगर
भाषाई योग्यता
जी, हाँ। मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या लगता है आपको सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या उसकी समस्या है जिसकी वजह से वो इस तरफ नहीं सोच पा रही है? दूसरी बात एक और मैं आपके पास आऊंगा,
ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका,
हाँ। कि भट्ट साहब ने जो कहा कि हम अंग्रेजी सीखें ये सम्मान का विषय तो है, लेकिन हम हिंदी ना बोल पाए या अपनी मातृभाषा ना बोल पाए ये अपमान का विषय है, क्या हमारे देश के लोग
देश ये आत्महत्या का विषय है?
ये क्यों लोग
अपनी भाषा को से कट जाएं
जी,
ये देश की आत्महत्या का विषय है, सामूहिक आत्महत्या का विषय है
जी।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व का उदाहरण दे लीजिए आप,
तो
जो भी तरक्की किया है,
सरकार
वाली जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोग सोचते हैं कुछ मजबूरी होगी, वास्तव में मजबूरी नहीं है, ये अभिजात वर्ग एलीट क्लास को पूर्ण आरक्षण देने का षड्यंत्र है। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हाई कोर्ट में देश में केवल 4 हाई कोर्ट में 24 में से 4 उच्च न्यायालय में देश की भाषा आप बोल सकते हैं, बाकी 20 में अंग्रेजी अनिवार्य है। अगर आप हर उच्च न्यायालय में उस राज्य की जो भाषा है, जैसे मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को आप का विकल्प दे दें, कर्नाटक हाईकोर्ट में कन्नड़ भाषा का विकल्प दे दें अंग्रेजी के अलावा, केरल हाई कोर्ट में मलयालम का विकल्प दे दें, इस प्रकार हर राज्य में अगर विकल्प है, उससे कोई भी जो रूलिंग पार्टी है उसका वोट बेस बढ़ेगा, उसका जनाधार बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। तमिलनाडु के ADMK DMK दोनों पार्टी की ओर से लगातार मांग होती रही है कि मद्रास हाई कोर्ट में
तो फिर ये
तमिल का विकल्प
क्यों हो, क्यों नहीं पाया?
क्योंकि बता आपको मैंने, भारत में नेता बेईमान देश के दुश्मन है, वो चाहते हैं कि जनता का शोषण हमेशा होता रहे, जनता दबी कुचली रहे, और उसके लिए बहुत ही ताकतवर हथियार है अंग्रेजी। आम जनता को छाटो, नीचे दबा के रखो, और कुछ ही लोग देश की मलाई खाएं
जी
अंग्रेजी के द्वारा, सबको छाट देते
हैं। श्याम जी, हम फिर आपके पास आएंगे, कुछ हमारे और श्रोता हैं उनकी बात सुनते हैं जी। अपना नाम बताइए।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
मैं सर हंसराज हूँ, इसमें अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ।
हंसराज जी अंबाला से बोल रहे हैं जी जी, बताइए हाँ, क्या कहना है आपका हाँ, इस मुद्दे पर?
सर श्याम जी ने बहुत डिस्कशन लंबी खींच दी है, इसलिए बार बार सोता हूँ कि कॉल जो है वो कम टाइम दिया गया। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत हिस्ट्री में स्टडी किया है, इंग्लिश भाषा को जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की बात का तो विषय चल रहा है, तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंस कम नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा तर्क ये है कि भारत के अंदर जितने जिन विषयों को इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाली बात ये हुई है कि हमारे पास हिंदी के जो स्कॉलर है वो इस जो जैसे वेस्टर्न हमारी जो लैंग्वेज आई है इंग्लिश आई है तो इसके अंदर हमारे को जो कुछ मिला है, ज्यादा लंबी मेरे पास टाइम तो कम है, लेकिन राजा राम मोहन राय साहब ने जो है इंग्लिश को वेस्टर्न भाषा को प्रोत्साहन दिया था और मेन बदौलत तो इंग्लिश के कारण समझने के कारण ही हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करवा सके हैं। और इसके साथ साथ तो टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी जो आई है वो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज से आई है और उसको समझने के लिए माध्यम इंग्लिश का रहा है। और अब ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं जो अनुवाद किया जा रहा है, साथ जी, के जी, साथ अब स्कॉलर की भी जरूरत नहीं है।
जी आपने अपनी बात कही, हमारे कुछ और श्रोता हैं, एक और उनकी भी बात सुन लेते हैं फिर आपके पास आएंगे श्याम जी। जी कहिए अपनी बात। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं अरुण बसर बोल रहा हूँ।
एक बार फिर से अपना नाम बोलिए।
एमडी खैरुल बसर।
हाँ एमडी सहगल साहब बताएंगे कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं।
एमडी सहगल नहीं, एमडी खैरुल बसर।
अच्छा अच्छा जी 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 बताइए।
जी मैं रक्सौल बिहार से बोल रहा हूँ।
जी क्या कहना चाहते हैं आप।
मैं कहना चाहता हूँ यही कि अंग्रेजी जो जबान है इसको सीखना जरूरी है, लेकिन जो हमारी मादरी जबान है हिंदी, सबसे पहले हमको उसका सीखना नहायत जरूरी है।
जी आपने इनकी बात भी सुनी और जो इससे पहले कह रहे थे कि जो तकनीक है, जो सब उच्च ज्ञान है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो चूंकि विदेशों से आ रही है, आज के दौर में भी सॉफ्टवेयर से लेकर के तमाम चीज़ें हैं जिनके ज्ञान के लिए हमें अंग्रेज़ी के जो विद्वान हैं या उन पर निर्भर रहना पड़ता है, या विदेशों से बहुत कुछ आ रहा है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भी एक कारण है। कितने सहमत हैं आप इसमें?
मैं इसे सहमत नहीं हूँ। देखिए आप अंग्रेजी को ले लीजिए, जिसके लिए हम लोग बहस कर रहे हैं कि अंग्रेजी हो या हिंदी हो, अंग्रेजी में आप बताइए पार्लियामेंट किस भाषा का शब्द है? पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा का है, अंग्रेजी का नहीं है। असेंबली, पार्लियामेंट, जस्टिस, जूरी, कोर्ट, प्लीड, एडवोकेट, साधारण शब्द, कलर, ऑरेंज, लेमन,
उस तरह से तो हिंदी में भी बहुत सारी शब्द
तो,
हैं जो
तो शब्द जो है आप जो भी प्रचलित है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा शुरुआती जो डिक्शनरी बनी थी अंग्रेजी की उसमें 20,000 ज्यादा थे इसके, फ्रेंच के, और ऐसे ही इटालियन, लैटिन, ग्रीक और बाकी भाषाओं से लिए गए थे। तो ये जो आप सोचते हैं कि पुस्तक नहीं है हिंदी में, ये गलत मतलब तर्क है। देखिए अगर आप अगर IIT में पढ़ाई हो रही है अंग्रेजी में और मैं अगर हिंदी का पुस्तक लिख दूं तो कोई विद्यार्थी उसको तो पढ़ेगा नहीं, क्यों पढ़ेगा जब इंग्लिश मीडियम में उसको परीक्षा देनी है। तो वो पुस्तक क्या है, धूल चाटती रहेगी। तो और कोई प्रकाशक तभी छापे उसको कुछ लाभ हो, तो ना प्रकाशक कोई बेवकूफ होगा जो छापेगा, जब तक मीडियम नहीं होता है
जी जी।
तब तक ना प्रकाशक छापना चाहेगा और ना कोई लेखक लिखना चाहेगा
जी।
तो ये ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले पूरा तैरना सीख ले तब पानी में पांव डालें
जी।
तो पहले माध्यम का विकल्प होना चाहिए तभी पुस्तक अपने आप आएगी। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से पुस्तकें आती हैं, न कि मैंने देश की भक्ति भावना से आती
है। बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, रिजवान अहमद हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी सिर्फ हिंदी पर या भारत में ही नहीं भारी है बल्कि ये तो दुनिया की हर भाषा व देश पर भारी है और ये अंग्रेजों की मेहनत का नतीजा है। अगर हम भी हिंदी पर मेहनत करें तो हिंदी भी अंग्रेजी वाला मुकाम पा सकती है। इसी तरह से कमल कांत हैं, वो कह रहे हैं कि विश्व के हर एक देश में अपनी भाषा को महत्व दिया गया लेकिन भारत में नकार दिया गया है, ये कैसी आज़ादी है, कैसा है गणतंत्र। तो इसके अलावा एक और कमेंट है जिसमें नाम नहीं दिख रहा मुझे, जिसमें कह रहे हैं कि भारत में भारतीय भाषा को हक नहीं, दुर्भाग्य है। क्या आज़ाद भारत के 8वें दशक में है? संसद की गुलामी की मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तमाम इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल अभी भी है कि इसके लिए क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या लोग भी उस तरह की सोच को, हमारे अंदर भी तो ये सोच है ना बहुत,
मेरी समझ में 100% सरकार जिम्मेदार है। आप बताइए भारत में लोग फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश क्यों नहीं, उसके प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, जापानीज, चाइनीज के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में हमारे यहाँ सभी नौकरियां हैं, अंग्रेजी में ही सारी उच्च पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है वगैरह।
समय खत्म हो गया है श्याम जी, मैं अब यहीं आपसे इजाजत लूंगा, हमारे स्टूडियो मैनेजर इंतजार कर रहे हैं, दीपक जसरोटिया ने संभाला है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति, नमस्कार।